Sometime back, I spoke on the foundation of God's love towards each one of us.
और कुछ समय पहले मैंने इस बात पर बताया था कि परमेश्वर का प्यार जो हमारे जीवन में एक नींव के समान होता है.
God's infinite love, that is the foundation of our Christian life.
और परमेश्वर का जो अनंत काल का जो प्रेम है वही मसीह जीवन की हमारी नींव है.
So before knowing anything, we should have a touch or a taste of God's love.
और किसी भी चीज का और स्वाद चखने से पहले हमें परमेश्वर के प्रेम का स्वाद चखना जरूरी है.
And that God's love is unconditional.
और परमेश्वर के प्यार में कोई भी शर्त नहीं होती है.
And it is on that knowledge of God's unconditional love that we can build our Christian life.
और ये परमेश्वर का जो बिना शर्त का प्यार है उसकी जानकारी या उसके ज्ञान के आधार पर ही हम मसीह जीवन को हम बना सकते हैं.
So once we know that foundation of God's infinite love towards us.
और परमेश्वर का अनंत प्रेम जो हमारे प्रति उसको जब एक नींव की तरह हम जान जाते हैं.
A second part of Christian life is our personal relationship with Jesus.
और तब दूसरा भाग वहां पर आता है जो है पर हमारा जो व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ होता है.
When knowing that God loves us, so I respond to His love.
और जब इस बात को मैं जान लेता हूँ कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है, तो उसके प्रेम के बदले में मैं प्रतिक्रिया करता हूँ.
We know sometimes we speak that Christianity is not a religion.
और कुछ समय पहले हमने बताया था कि मसीहत जो है वो कोई धर्म नहीं है.
It's not being a part of an organization or a member of a church.
और ये किसी संस्था का भाग होना है, कलीसिया का एक सदस्य बन जाना, उसके सब बारे में नहीं है.
But it is a personal relationship with Jesus Christ.
लेकिन ये व्यक्तिगत संबंध यीशु मसीह के साथ है.
So on the foundation of God's love towards us, building, nurturing our personal relationship with Jesus Christ is also very important.
और परमेश्वर का प्रेम जो हमारे प्रति है, जो एक नींव के समान है, उसके बाद उसके ऊपर हम परमेश्वर के प्रतिक्रिया में उससे प्रेम करके हम उस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं.
And in that we have a role to play. Something is depending on us.
और वहाँ पर हमारे एक लिए काम करना है, हमारा एक भाग है जो हमारे ऊपर निर्भर करता है.
Brother Danny mentioned about, you know, in our relationship with each other, how we can have, when our relationship is not very good, I will not have the courage to look at Kiran's eyes.
और जब भाई डैनी ने यहाँ पर बताया कि जब हमारे संबंध एक दूसरे के साथ सही नहीं है, तो मेरे दूसरे भाई उसकी आंखों में आंख डालकर मैं बात नहीं कर पाऊंगा.
It can most commonly happen in family, wife, husband and wife, not very cordial relationship, they'll choose to look at each different directions.
और पति पत्नी में भी ऐसा खास करके हो सकता है, जब एक दूसरे से सहमत नहीं है तो दूसरी ओर देखकर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे.
So in a way that applies to our relationship with Jesus also.
और ये हमारे जो यीशु मसीह के साथ संबंध उसमें भी ये लागू होता है.
When we don't have a good conscience with the God, we will not have the confidence to look at Jesus' eyes.
और जब परमेश्वर के प्रति जो हमारा एक अच्छा विवेक नहीं होगा, तो हमारे पास वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा उसकी यीशु मसीह की आंखों में आंख डालकर उस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए.
That happened in Genesis.
जब उत्पत्ति में हम इसे पढ़ते हैं,
Adam and Eve disobeyed God.
जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया परमेश्वर के.
When next time God visited, walked into the Garden of Eden.
और जब दूसरी बार परमेश्वर वहां पर आदम की वाटिका में उनसे मिलने के लिए वहां पर टहलने के लिए आता है.
They looked for a place where they could hide themselves.
और आदम और हवा ऐसी जगह को ढूंढते जहां वो अपने आप को छिपा सके.
Till then that was not there. They were rejoicing, they would be excited when the Lord is visiting the garden.
और उस समय के दिन तक वो बहुत ही आनंदित होते थे कि परमेश्वर हमसे मिलने के लिए आता है.
But when their disobedience defiled their conscience.
और जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उनका जो विवेक था उसको उन्होंने पूरी तरह से गंदा कर दिया.
When God visited, it's not something welcoming, so they want to hide somewhere.
और तब जब परमेश्वर उनको मिलने के आता है, तो उसको स्वागत करने की बजाय अपने आप को छिपाते हैं.
So that's an excellent. Let us look at our own lives. How is our relationship with Jesus?
और आइए अपने आप को, अपने जीवन को जांचे और अपने हमारा रिश्ता परमेश्वर यीशु मसीह के साथ कैसा आज है.
It is a very warm, welcoming, enjoyable relationship, and we can speak to Jesus, communicate with Jesus face to face from the depth of our heart.
और क्या हम ऐसा रिश्ता परमेश्वर के साथ रखते हैं कि उसका स्वागत करने वाला आनंद के साथ और उसके साथ अपने चेहरे को देखते हो, उसको हम पूरे हृदय के साथ आनंद मनाते हैं उसको.
That is very important.
बहुत ही महत्वपूर्ण ये है.
We should assess ourselves. How we rate our relationship with Christ.
और हम अपने आप का जो परमेश्वर यीशु मसीह के साथ रिश्ता है उसको हम जांचे.
On the other hand, is it that we lack confidence? We can't we cannot think about looking at Jesus' face.
और दूसरी भाग अगर यदि ऐसा है कि परमेश्वर की और हमारे उसको देखने के पास हमारे पास वो हियाव नहीं है यदि.
As we heard in the children's story.
और जैसे बच्चों की स्टोरी के अंदर हमने पढ़ा.
So we need not be discouraged. We need not think that. I am hopeless.
और कभी हमें निराश नहीं होना है सोचने के लिए कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है.
But we should consider coming back.
लेकिन हमें वापस और लौटना चाहिए.
Coming back to that healthy, good relationship with Christ again.
और यीशु मसीह के साथ एक स्वस्थ एक बहुत ही अच्छे रिश्ते के पास हमें लौटना चाहिए.
And that is what the prodigal son did.
और यही उड़ाव पुत्र ने किया.
He owned up his mistake.
और उसने बहुत सारी गलतियां की.
He owned up his disobedience.
और उसने बहुत सारे आज्ञा का उल्लंघन भी किया.
He owned up his rebellion.
और उसने बहुत ही वहां पर बलवाखोरी किया.
And when he remembered his unconditional love of the father.
लेकिन वहां पर उसके पिता का जो बिना शर्त का प्रेम जो उसको उसने स्मरण किया.
He chose to go back.
और उसने चुनाव किया कि वापस वो लौटे.
He told, I am not worthy of his love again.
और उसने कहा कि मैं उसके प्रेम के अभी योग्य नहीं हूं कदापि.
I just want to be like one of his servants.
और मैं केवल उसके एक दास के समान वहां पर रहना चाहता हूं.
I wasted everything, so I cannot call again. I have no right to be called his son again.
और मैंने सब कुछ व्यर्थ किया. अब मेरे पास कोई अधिकार नहीं कि मैं उसका बेटा कहलाऊं.
So that is how that son came back to the home.
और उसी आशा के साथ वो पिता के पास वो घर पर वापस लौटा.
But we can see the father's love.
और वहां पे पिता के प्रेम को देख सकते हैं.
Is not asking for an account of all the wasteful things he did.
और पिता वहाँ पर उसको पूरा जो व्यर्थ बात थी जो उसने की उसका सारा हिसाब किताब नहीं मांगने लग जाता.
He welcomed him and embraced him.
उसको वो स्वागत करता है गले से लगाता है.
And as a sign of his approval, gave a gold ring and gave a nice robe.
और सहमति के चिन्ह के अनुसार उसको एक अंगूठी देता है और एक अच्छा वो उसको कोट देता है.
And there was an unusual celebration.
और वहां पे एक अद्भुत एक आनंद उत्सव वहां होता है.
That is how God looks us.
और वैसे ही परमेश्वर हमारी ओर देखता है.
When we choose to come back to the father's house.
और जब हम पिता के घर पर लौटने का चुनाव करते हैं.
And Russell, we say, he chose to leave a cordial, wonderful relationship with the father.
और जब हम परमेश्वर पिता के साथ उस रिश्ता जो बहुत ही अद्भुत है उसको चुनते हैं.
So this is something we should speak to ourselves.
और ये बातें हमसे बात करनी चाहिए.
So going instead of going back and away, decide to come back.
और पीछे 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 लौटने के बजाय हमें परमेश्वर के पास आने का उसके नजदीक आने का हम निर्णय करें.
The Father is waiting to receive us wherever we are.
और जहां कहीं हम हैं पिता हमें उसके पास लौट आने की वो बाट देखता है.
And we read in Romans chapter 5 verse 1.
और रोमियो 5:1 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं.
Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
और जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे.
I like that expression written there, peace with the God.
और यहाँ पे जो अभिव्यक्ति लिखी कि परमेश्वर के साथ मेल रखे.
Are we at peace with the God?
और क्या हम परमेश्वर के साथ एक शांतिपूर्ण उस संबंध में क्या हम आज हैं?
Or we are in struggle?
और क्या हम संघर्ष में हैं?
We are not in good terms.
और क्या हम अच्छे एक व्यवहार में परमेश्वर के साथ आज नहीं हैं?
Thing to be, no, be at peace with the God always.
और परमेश्वर के साथ हमेशा मेल में रहना ये बहुत ही अद्भुत बात है.
Seek to be at peace with God always.
और परमेश्वर के साथ शांतिपूर्ण स्वभाव या उस व्यवहार में बने रहना बहुत ही उसको हम खोजे.
Our conscience will confirm that I am at peace with God.
और हमारा विवेक हमको ये बताएगा कि मैं परमेश्वर के साथ उस मेल के रिश्ते में हूँ या नहीं.
And that peace with God comes by justification by faith.
और परमेश्वर के साथ वो जो शांति है वो जो धर्मीकरण जो धर्मी ठहराया जाना विश्वास के द्वारा होता उससे हमें मिलता है.
It's not because I am good, I am righteous, I am perfect, therefore God accepting. No.
और ये इसलिए नहीं कि मैं बहुत ही धर्मी हूँ मैं बहुत अच्छा हूँ इसलिए परमेश्वर मुझे अपनाता है ऐसा नहीं है.
It is God's love which is receiving us back.
ये परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे अपनाता है.
So, Paul told is speaking in Romans 8.
और रोमियो 8 में पॉलुस इस प्रकार कहता है.
He speaks that this thing that nothing can separate me from the love of God.
और वो वहां पर कहता है कि कोई भी चीज मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकती.
I remember when I was a young Christian.
मुझे याद है कि मैं एक जवान मसीह जब था.
My relationship with God was I was believing in God.
और मैं परमेश्वर पे विश्वास करता था.
And I would pray and God will answer my prayers.
और मैं प्रार्थना करता था तब परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर देता था.
It can be for passing my examination when I'm sick.
और जब मैं कभी भी एग्जाम में पास होने के लिए शायद वो प्रार्थनाएं करता था.
Or when I want an increment.
और जब मुझे इंक्रीमेंट चाहिए था तभी शायद मैंने प्रार्थना की।
I pray and God used to answer.
और जब मैं प्रार्थना करता था परमेश्वर उसका उत्तर जरूर देता था।
So I remember a picture, you know, it like my life can be compared with a vehicle which I am driving and I have given a place to Jesus in the vehicle in the rear seat.
चित्र को मैं सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि एक व्हीकल है जिसको मैं चला रहा हूं, यीशु मसीह को मैंने वहां पर बैठने की एक जगह दी लेकिन गाड़ी मैं चला रहा हूं।
Because I knew that I need Jesus.
और मुझे ये पता है कि मुझे यीशु मसीह की जरूरत है।
When I need help, I would turn to him and ask him.
और जब भी मुझे जरूरत पड़ी तब मैं उसकी ओर मुड़ूंगा और उससे मदद को मांगूंगा।
He will definitely give because he loves me.
और क्योंकि वो मुझसे प्रेम करता है जरूर मेरी मदद
करेगा। So I realized that that is a very very poor relationship.
और ये बहुत ही एक दयनीय गरीब ऐसा रिश्ता वो था।
I am just using Jesus.
और मैं यीशु मसीह का केवल इस्तेमाल ही कर रहा हूं।
I just want him to do some favor to me.
और मैं केवल कुछ वो मुझ पर अनुग्रह दया कर दे, कुछ मेरी मदद कर दे, वो उसकी ओर ही मैं देख रहा हूं।
I want to pass my examination.
और मैं अपने एग्जाम को पास करना चाहता हूँ।
I want to get good increments.
और अच्छा इंक्रीमेंट मुझे मिलना चाहिए।
So I pray and I am expecting Jesus to do that favor to me.
और मैं ये अपेक्षा कर रहा हूँ कि यीशु मसीह सारा फेवर मेरे लिए करे।
But I had never surrendered my life to him.
और लेकिन मैंने अपना जीवन पूरी तरह से उसको समर्पित नहीं किया।
My vehicle I am driving still.
वो गाड़ी को अब भी मैं ही चला रहा हूँ।
But I remember one of my friend told me.
मेरे एक दोस्त मित्र ने मुझसे इस प्रकार कहा एक बार।
There is a better way of living.
उसने कहा एक बेहतर तरीका है जीवन जीने का।
Hand over your steering wheel of life to Jesus.
और अपना जो स्टीयरिंग व्हील जो गाड़ी का है उसको यीशु मसीह के हाथों में सौंप दे।
Allow Jesus to control everything in your life.
और यीशु मसीह को अनुमति दे ताकि आपके जीवन की हर एक बातों का वो नियंत्रण करे।
Let him be the Lord and master of your life.
वो आपके जीवन का प्रभु और स्वामी बनने दे।
And you be by his side. Let Jesus control your life.
और यीशु मसीह को नियंत्रण करने दे और आप उसके बाजू में जाकर बैठिए।
So that is a wonderful life.
और यही एक अद्भुत जीवन है।
And I want to challenge everyone of you. Allow Jesus to be the Lord of your life.
और मैं आप सभी को चुनौती देना चाहता हूँ कि आप यीशु मसीह को अनुमति दे कि वो आपके जीवन का प्रभु बन सके।
Not just using Jesus to get something.
केवल यीशु मसीह का इस्तेमाल न करें आपकी जरूरतें और आपकी चीजों को केवल प्राप्त करने के लिए।
So when we are just using Jesus, what will happen is?
और केवल जब आप यीशु का इस्तेमाल ही करते हैं तब क्या होता है?
One day, for whatever reason, suppose he is not answering your prayer.
और कोई भी कारण के वजह से एक दिन यदि यीशु मसीह आपकी प्रार्थना को उत्तर यदि नहीं देता है,
or he delays to answer our prayers.
और यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर देने में वो विलंब करता है,
our love for Jesus will diminish.
और तब हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है वो कमजोर या कम होता जाएगा.
We will give up our faith.
और हम अपने विश्वास को त्याग देंगे.
Because my Christianity is just to get something.
और मेरा मसीहत तो उतना ही है कि मैं उससे कुछ प्राप्त कर सकूं.
But we see real godly people.
और आप देखिए कि एक सही मसीही लोग या ईश्वरीय लोग जो होते हैं,
their love and devotion to Christ is not to get something.
और उनका प्रेम और समर्पण परमेश्वर के प्रति कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं होता है.
Their Christianity is a response to His love towards them.
लेकिन उनकी मसीहत परमेश्वर का जो प्रेम उनके प्रति एक प्रत्युत्तर होता है.
Even if God delays answer for a prayer.
और यहाँ तक कि यदि परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने में विलंब भी करता है.
Or the answer to prayers is not in the way we expected.
और यहाँ तक कि प्रार्थना का उत्तर जैसे परमेश्वर से उन्होंने अपेक्षित किया था उस प्रकार से नहीं है.
Their love to Christ is not diminished.
और वहाँ उनका प्रेम परमेश्वर के प्रति जो है मसीह के प्रति वो कमजोर नहीं पड़ता है.
Those who knows the heart of they know that there's a reason.
और वहां वो उस हृदय को जब वो जानते हो तो जानते हो उसके लिए कारण है.
If God has delayed or God has not answered my prayer, there is a reason.
और यदि परमेश्वर ने विलंब किया है, यदि मेरी अपेक्षा के अनुसार उत्तर नहीं है तो उसका कारण जरूर है.
And it is for my good.
और ये मेरे भलाई के लिए है.
But I will humble myself under his hand.
और मैं अपने आप को नम्र करके उसके अधीनता में सौंप दूंगा.
And he will definitely lift me up in his time.
और उसके समय में जरूर वो मुझको उठाएगा.
We can take the example of Abraham.
और हम अब्राहम के उस उदाहरण को जब देखते हैं.
Abraham was the friend of God.
और अब्राहम जो है परमेश्वर का मित्र था.
God had promised him something he was really earnestly desiring in his life.
और परमेश्वर ने कुछ उसका वायदा दिया था उन चीजों के लिए जिसकी वो बहुत ही आतुरता से बहुत ही इच्छा के साथ वो बाट जो रहा था.
Abraham had everything, but he had no children.
अब्राहम के पास सब कुछ था लेकिन उसके पास संतान नहीं था.
No, such a family, they know more than anything, they would willing to pay anything, any portion of their property to have a child.
और ऐसे परिवार के अंदर वो किसी भी संपत्ति का भाग या किसी भी चीज को बेचने के लिए भी तैयार हो जाए ताकि उनको संतान प्राप्त हो सके.
And God promised Abraham, I will give you a son.
और ये परमेश्वर ने उसको वायदा दिया अब्राहम को, मैं तुझे एक बेटा दूंगा.
But Abraham had to, God had a time.
लेकिन परमेश्वर के लिए एक समय वहां पर नियुक्त किया हुआ था.
Abraham had to wait.
अब्राहम को वहां पे उसको राह देखनी पड़ी.
Maybe others teased him.
और वहां पर हो सकता है कि आसपास के लोगों ने उसको शायद चिढ़ाया होगा या मजाक किया होगा उसका.
But Abraham faith did not diminish.
लेकिन अब्राहम का विश्वास वहां पे कमजोर नहीं पड़ा.
He was not displeased with God.
वो परमेश्वर के साथ अप्रसन्न नहीं हुआ.
So that indicates a good relation with Christ.
और ये दर्शाता है मसीह के साथ एक अच्छे रिश्ते को.
Abraham's relation with God was not to get something.
और अब्राहम का जो रिश्ता परमेश्वर के साथ इसलिए नहीं था कि वो उससे कुछ प्राप्त कर सके.
Even if the most important thing he was looking for.
और यहाँ तक कि बहुत ही महत्वपूर्ण जरूरत को वो परमेश्वर की ओर से प्राप्त करने की अपेक्षा करता था, फिर भी
he knew God.
उसको वो परमेश्वर को जानता था.
And he understood if God has delayed there is a reason.
वो ये जानता था कि परमेश्वर ने अगर विलंब कर रहा है तो उसका एक जरूर एक कारण है.
And his faith, even though years passed, also his faith grew stronger and stronger.
यहाँ तक कि बहुत साल बीत गए लेकिन उसका विश्वास और भी मजबूत और मजबूत बनता गया.
He wasn't disheartened.
और वो कभी निराश नहीं हुआ.
He believed that God can even raise a person from raise a dead person.
और यहाँ तक उसने विश्वास किया कि मुर्दे को भी वो जीवित कर सकता है.
And he can bring into being things which is not there.
और जहां पर कुछ भी नहीं वहां पर वो चीजों को अस्तित्व में ला सकता है, उस पर उसने विश्वास किया.
And if God has promised something, he is also able to give it to me.
और वो उसने इस बात को देखा कि यदि परमेश्वर ने मुझे कुछ प्रतिज्ञा की है तो उसको वो देने के योग्य है.
He wouldn't mind waiting for God's time.
और वहां पर उसने परमेश्वर के समय के लिए बाट देखी.
So that is a reflection of Abraham's relation with God.
और वो अब्राहम का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता था उसका वो अभिव्यक्ति वो था वो विश्वास.
In Romans chapter 8,
रोमियो 8 अध्याय,
Paul is asking, what will separate me from love of Christ?
और पौलुस यहाँ पे लिखता है कि मसीह के प्रेम से मुझे क्या कौन सी बात अलग करेगी?
In Romans 8:35 onwards.
और रोमियो 8:35 से आगे हम पढ़ते हैं इसे.
Will tribulation, distress, persecution, or famine, nakedness, or peril, or sword?
और वहाँ पे लिखता है कि क्लेश या संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई या जोखिम या तलवार.
He is also saying verse 38.
और 38 वचन में कहता है,
I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor things present, nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor any other thing, created thing. will be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord.
Paulus कहता है मैं निश्चित जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानता है न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ्य न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा.
So that is a real love. My love is not depending on something.
और यही एक सच्चा प्रेम है. मेरा प्रेम किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं होता है.
When I truly know God, God's heart, my love to him is not depending on something I get.
और जब मैं परमेश्वर को जानूंगा, उसके सच्चे दिल को जानूंगा, तब मेरा जो रिश्ता या मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति कुछ पाने के हद तक ही नहीं रहेगा.
To Galatians, Paul wrote in Galatians chapter 3:1.
गलातियों 3:1 में लिखा है,
You foolish Galatians.
हे निर्बुद्ध गलतियों.
Who has bewitched you?
किसने तुम्हें मोह लिया है?
Before whose eyes Jesus Christ was publicly portrayed as crucified.
और तुम्हारी तुम्हारे आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया.
See, believers can happen that.
और ये विश्वासियों के साथ ऐसा हो सकता है.
Something like they are bewitched.
और यहाँ पर उनको किसी चीज के लिए द्वारा मोह लिया गया हो.
They are not able to see the sacrifice of Christ.
और वो यीशु मसीह के बलिदान को नहीं देख पा रहे हैं.
They are not able to see the God's love. Jesus loved towards which gave himself on the cross.
और जो यीशु ने उस क्रूस के ऊपर अपने आप को दे दिया, उस प्रेम को वो नहीं देख पा रहे हैं उनके प्रति.
They are so bewitched, belittled, what is there in that kind of thinking?
और कितने निर्बोध और कितने मोह लिए गए लोग हैं ये.
They will not verbally talk like, but in they don't value that.
और शब्दों से तो शायद ये नहीं बोलेंगे, लेकिन इन चीजों का वो मूल्य नहीं करते हैं.
Does it happen to us?
और क्या हमारे साथ ऐसा होता है?
is Jesus Christ portrayed, and we are not able to see God's love.
और यीशु मसीह जो हमारे सामने होता है, वो हमें इतना मोह लिया गया होता है कि उसको हम चित्र उसको सही स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते.
Jesus didn't answer on my prayer or my answer delayed, so I don't have a good relationship with.
और जब यीशु मसीह मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं देता, विलंब करता है, तब वो मोह लिया जाता हूँ और मेरा सही संबंध उसके साथ नहीं होता.
I am discouraged and I have an indifferent spirit now.
और तब मैं निराश हो जाता हूँ, मेरे अलग अलग ही प्रकार की मेरे अंदर आत्मा आ जाती है.
I remember something which I read many years before.
मैं कुछ याद स्मरण करता हूँ, कुछ सालों पहले मैंने उसको पढ़ा था.
That's about I probably shared this before.
और मैंने शायद इसको पहले भी बांटा है.
It remained in my heart.
लेकिन मेरे हृदय में हमेशा रहता है.
You know this missionary to China, Hudson Taylor.
और हडसन टेलर जो मिशनरी जो चाइना में गए थे, उनके बारे में हम जानते हैं.
When his wife died in China.
और जब चाइना में उनकी उनकी पत्नी जो उनका मृत्यु होता है.
So at the death bed, she said, "You're dying," and she told something to her husband.
और जब उसके मृत्यु के उस खाट के ऊपर जब वो थी, उसके मरते समय उसके पिता उसके पति से वो इस प्रकार कहती हडसन टेलर से.
She said, "Ever since I accepted Jesus as my savior."
और जब से मैंने यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है.
When I responded. To the love Jesus displayed on the cross.
और उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने जो प्रेम को दिखा, उसके ऊपर मैंने उसके भरोसा रखकर मैंने प्रत्युत्तर दिया.
There was no cloud between me and him.
और मेरे बीच में और मेरे परमेश्वर के बीच में कोई भी बादल नहीं था.
That's a good thing. How is our relation with the Christ? It's a cloudy relation, not very clear.
और कि हमारे साथ कैसा वो रिश्ता परमेश्वर के साथ है, क्या वो बादल से भरा हुआ कोई रिश्ता है, उसको स्पष्ट नहीं देख पाते.
Something obscuring my relation with the Christ and me.
और मेरा जो संबंध यीशु मसीह के साथ है, उसको कोई बाधा के रूप में, अवरोध के रूप में कुछ बन रहा है क्या?
So we can seek to clear those clouds. Our relationship should not be cloudy.
और हमारा जो रिश्ता इस प्रकार बादलों से भरा हुआ नहीं हो सकता, उसको हमको साफ करना है.
With wrong motive, our heart is filled with wrong motives, the relationship is cloudy.
और हमारा गलत जो विचारधारा है या स्वभाव है, उन बातों से हमारा मन भर जाता है, उसके कारण वो बादल घेर लेते हैं हमको.
We know in we children, some of the children today said that memory verse.
और उस बच्चों ने आज वो memory verse को कहा.
One of the lawyer came to Jesus and asked, "What shall I do to get eternal life?"
और वहाँ पे एक जन आकर यीशु मसीह से कहता है कि अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए?
Jesus asked him, "What does Bible say?"
यीशु मसीह ने उसको पूछा कि बाइबल वचन क्या बताता है?
So he told this.
और उसने उसे इस प्रकार कहा.
That is in Luke chapter 10:27.
और लूका 10:27 में.
You shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your strength, and with all your mind, and your neighbor as yourself.
और उसने उत्तर दिया कि तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी शक्ति, सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख.
Jesus told him, do this and you will live.
और वहां पर कहता है कि तू इस प्रकार कर और तू जिएगा.
That is a way of life.
और यही जीवन का रास्ता है.
Seeking to love Jesus.
यीशु मसीह से प्रेम करना.
With our all being.
और अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ उससे प्रेम करना.
An unreserved love and devotion to Christ.
और ऐसा प्रेम जिसके अंदर कोई भी बाधा या किसी भी प्रकार के ऐसे अवरोध नहीं है.
That is something which each one of us should seek to build in our life.
और यही बात है जो हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ में हमें बनाने और खोजना है उसके अंदर हमें.
Paul told in 2 Corinthians chapter 11.
और दूसरे कुरंथी 11 में पौलुस इस प्रकार कहता है.
Portrayed as a bridal relationship.
और वहाँ पे एक दूल्हे दुल्हन का जो रिश्ता होता है, उस प्रकार उसने वहाँ पर चित्रण किया.
Relationship with Christ is like a boy and girl engaged.
और वहाँ पर वो कहता है कि यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता एक लड़के और लड़की जो मंगनी हो जाती है, उस प्रकार होता है.
So when I read this, I thought of, I observed in our own circles when there's an engagement.
और जैसे मैंने इस चीज को पढ़ा, तब मैंने इसका चित्रण कल्पना किया कि हमारे सर्कल के अंदर जब किसी की मंगनी होती है.
You can observe this when a brother and a sister is engaged, boy and girl is engaged for marriage, everything decided.
और जब एक लड़का और लड़की एक शादी के लिए उनकी मंगनी हो जाती है, सब कुछ तय हो जाता है.
From that day, you can see. Look at their face. You can see the difference.
और वहाँ पे उनके चेहरे को आप देखेंगे, तो आप उस भिन्नता को उनके चेहरे पर उस दिन से देख सकते हैं.
Their face is changed. They are joyous. There is a joyful anticipation for their wedding day.
और उनका पूरी तरह से उनका चेहरा बदल जाता है, उनके शादी के दिन के उस तैयारी के अंदर उनका पूरी तरह से वो मगन हो जाते हैं.
Almost like their personality. They are always that. know, inside out joy can be seen on their face.
और उनका व्यक्तित्व इस तरह से हो जाता है, भीतर बाहर पूरी तरह से उनका उनके अंदर वो आनंद को हम देख सकते हैं.
So Paul was taking that example.
और पौलुस उस उदाहरण को वहाँ पर लेता है.
And he's saying, I'm afraid that as the devil deceived Eve and Adam.
और वो कहता है कि मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया,
यू मे बी लेड अस्ट्रे फ्रॉम योर सिंपलिसिटी एंड योर डिवोशन टू क्राइस्ट.
और वैसे तुम्हारे मन उस सिद्धाई और पवित्रता जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किया जाए.
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इट्स गुड टू पॉज एंड लुक एट आवर ओन लाइफ.
और प्रिय भाइयों बहनों, अपने आप को थोड़ा रोक कर अपने आप को जांचना जरूरी है.
आर देयर थिंग्स इन आवर लाइफ,
और क्या हमारे जीवन में आज ऐसी चीजें हैं.
Think about again, a boy and girl, they are engaged and suppose in between they have another secret relationship with someone else.
और सोच के देखिए, एक लड़का लड़की जब उनकी मंगनी हो जाती है और बीच में ही उनका और भी कोई सीक्रेट या भीतरी कोई दूसरा कोई संबंध उनका होता है.
What does that mean?
उसका मतलब क्या है?
Lack of faithfulness.
और वहाँ पर विश्वास योग्यता उनके अंदर एक दूसरे के प्रति नहीं
है. It is not even acceptable in human circles.
और यहाँ तक कि मानवीय लोगों के बीच में उसको हम अपनाते नहीं है.
In the same way, are there other things distracting us away from Christ in our life?
उसी प्रकार मसीह के साथ हमारे संबंध के बीच में और कोई चीजें आकर हमें वहां से विचलित करती है, हमारे ध्यान को भंग कर रही है.
Are there more attractive things?
और क्या उससे बढ़कर आकर्षक चीजें हमें दिख रही है?
Capturing our attention.
और हमारे ध्यान को पूरी तरह से वो ले लेता है.
Things of this world.
दुनिया की संसार की चीजें,
the glamour of this world,
इस संसार की जो सारी मशहूर बातें जो होती हैं,
sometimes the blessing which God has given,
और यहाँ तक कि परमेश्वर की आशीष कई बार वो जो देता है वो ही,
it's good to look at our own life,
हम अपने आप के जीवन को देखें,
are there things, other things which is leading me astray,
और क्या मेरे जीवन में ऐसी कोई चीजें हैं जो मुझे मसीह से और दूर लेकर जा रही हैं?
From our simplicity and our purity or devotion to Christ.
और जो हमारा सिधाई जो होनी चाहिए, जो हमारा जो समर्पण होना चाहिए, उससे हमें वो भ्रष्ट कर रही है, दूर लेकर जा रही है.
God is touching us. God is speaking to us. Let's make it this. Lord, there are things in my life.
और परमेश्वर शायद आज हमें छू रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हमें उसे कहे कि प्रभु, हाँ मेरे जीवन में ऐसी चीजें आज है.
Which is drawing me away from you.
और जो मुझे तुझसे दूर लेकर जा रही है.
I am not able to love you from the depth of my heart.
और मैं अपने पूरे हृदय की गहराई से तुझसे प्यार नहीं कर पा रहा हूँ.
My attention is on other things.
और मेरा जो ध्यान है और किसी चीजों के ऊपर लगा हुआ है.
I am neither enjoying Christian life nor I am enjoying the world.
और मैं न संसार को आनंद उठा रहा हूँ या न मसीह जीवन का आनंद उठा पा रहा हूँ.
That's a sad thing.
ये बहुत ही दुखद बात है.
We should ask ourselves, is Jesus worthy of our love?
और हम अपने आप को पूछे, क्या परमेश्वर यीशु मसीह मेरे प्रेम के योग्य है?
Jesus did not plead anyone and to follow me.
और यीशु मसीह ने किसी से विनती नहीं की कि मेरे पीछे मेरा अनुसरण करो.
But if we are convinced he is worthy of our love and devotion.
और यदि आप इस चीज से बहुत ही कन्विंस हो जाएंगे कि वो हमारे सारे समर्पण और प्रेम के योग्य है,
then we should give our whole being to him.
तो हमारा पूरा व्यक्तित्व हम उसे दे देंगे.
It should not be a divided interest in Jesus.
और हमारा जो भरोसा है, हम अपने आप को देने में कभी पीछे नहीं हटेंगे, उसमें दो भाग नहीं, दो मन विचलित नहीं होंगे.
We should confess that Lord, I love you more than anything else, more than anybody else.
और हम कबूल करेंगे किसी भी चीज से बढ़कर, किसी भी व्यक्ति से बढ़कर, प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूँ.
If you think he loved us, he gave himself.
और यदि आप इस चीज पर विश्वास करते कि उसने हमसे प्रेम किया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया.
If you think Jesus is worthy of my devotion.
और तब क्या आप विश्वास करते कि आपके समर्पण के योग्य यीशु मसीह है?
I just want to conclude by sharing something from which last week touched my heart.
और पिछले सप्ताह में जो मुझसे मेरे हृदय को स्पर्श किया, उस बात को मैं कहकर समाप्त करूंगा.
That is written in Revelation.
वो प्रकाशित वाक्य में लिखा है.
To the church in Laodicea.
और लौदीकिया की कलीसिया के बारे में वहाँ पर वो कहता है.
So Jesus telling them in Revelation chapter 3:15 onwards.
और प्रकाशित वाक्य तीसरा अध्याय 15 वचन से आगे यीशु इस प्रकार कहता है.
I know your deeds.
मैं तेरे कामों को जानता हूँ.
That you are neither cold nor hot.
कि न तो तू ठंडा है और न गर्म.
I wish that you were cold or hot.
भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता.
It's a sad thing, neither hot nor cold.
ये बहुत ही दुखद बात है, ना ठंडा है ना गर्म है.
Jesus saying it's better you either cold or hot.
यीशु कहता है भला होता कि तू या तो ठंडा हो जाए या फिर तो गर्म हो जा.
Neither here nor there, no passion for Christ.
और ना यहाँ पे है ना वहाँ पे, कोई भी धुन परमेश्वर के लिए नहीं है तेरे अंदर.
There's no burning love in my heart to the Lord.
और मेरे अंदर वो एक जलता प्रेम यीशु मसीह के प्रति नहीं है.
So I remember when I was young, something which I heard again helped me.
और मैंने कुछ समय पहले इस प्रकार सुना था जिससे मुझे बहुत ही सहायता मिली.
इट इज ओके इफ यू डोंट हैव if you are not personally a gifted person.
और ये अच्छा है, ठीक है, अगर आपके अंदर बहुत सारे talent या बहुत सारे gift नहीं है.
Suppose you are not a good speaker, you are not a good singer.
यदि आप अच्छे गाने वाले नहीं हैं, यदि आप अच्छा प्रचार करने वाले यदि नहीं हैं,
you are not a good evangelist. Suppose you are not good in anything.
आप सुसमाचार प्रचार करने वाले नहीं, आप किसी भी प्रकार के तालंतों से यदि नहीं भरे हैं,
that's fine.
ये ठीक है फिर भी.
If you lack in a talent, that is okay.
आपके अंदर तालंतों की कमी है तो भी ठीक है.
If there's a lack of burning love in your heart for the Lord, there is something wrong.
लेकिन यदि आपके हृदय में परमेश्वर के प्रति एक जलते हुए प्रेम की यदि कमी है तो उसमें कुछ ठीक नहीं है या कुछ सही वहाँ नहीं चल रहा है.
So we should be either hot or cold.
या हमें ठंडा होना है या तो फिर गर्म होना है.
I think the reason Jesus told is very often this a lukewarm Christian, he is worse than an unbeliever.
और यहाँ पर यीशु इस प्रकार इसलिए कहते हैं कि गुनगुना जो विश्वासी है एक अविश्वासी से भी बहुत ही बदतर होता है.
It's better to be a good Christian, a wholehearted believer or an unbeliever.
और यहाँ पर हम बहुत ही एक अच्छे विश्वासी बन सकते हैं, पूर्ण हृदय से एक समर्पित विश्वासी, या फिर तो फिर अविश्वासी बन जाए, संसार के हो जाए.
Being having a lukewarm relation Christian life is a very sad thing.
ये गुनगुना प्रकार का जो हमारा जो रिश्ता होता है बहुत ही दुखद बात है.
None of us should be there.
और हमें ऐसा रिश्ता हमारे पास ऐसा रिश्ता नहीं होना चाहिए. हमें अपने आप को जांचना है.
My Christianity is a lukewarm Christianity.
और क्या मेरी मसीहत गुनगुनी हो गई है परमेश्वर के प्रति?
My love to the Lord is a lukewarm.
और क्या मेरा प्रेम परमेश्वर के प्रति जो होना चाहिए वो गुनगुना हो गया है?
It's not hot.
वो ना गर्म है.
It's not cold also. Nobody can say I am an unbeliever. I am a born again believer.
और कोई ठंडा भी नहीं है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि मैं बहुत ही संसार का हूँ या फिर मैं नया जन्म प्राप्त किया हुआ नहीं हूँ.
But my love toward the Lord is lukewarm.
लेकिन मेरा प्रेम जो परमेश्वर के प्रति है बहुत ही ठंडा है या गुनगुना हो चुका है.
It is indifferent.
वो बहुत ही अलग है.
So Jesus is saying, so because you are lukewarm and neither hot nor cold, I'll spit you out of my mouth.
16 वचन में यीशु कहता है, इसलिए कि तू गुनगुना है, ना ठंडा है, ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ.
When you are in a lukewarm stage.
और आज हम यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एक अवस्था में हैं जहाँ पर हम गुनगुने हैं हो चुके हैं.
This is a danger.
ये बहुत ही खतरनाक है.
That danger is written in verse 17.
और 17 वचन में वो खतरा लिखा हुआ है.
You say, I am rich.
तू तो कहता है कि मैं धनी हूँ.
And have become wealthy.
और धनवान हो गया हूँ.
And I have need of nothing.
और मुझे किसी चीज की घटी नहीं है.
When you look on, that is a problem.
और जब आप गुनगुने हो जाते हैं तो वहां पर एक समस्या आ जाती है.
We are not understanding.
हम समझ नहीं पाते हैं.
We are claiming I am rich.
हम ये बात का ऐलान करते हैं कि मैं धनी हूँ.
I am wealthy.
मैं बहुत ही धनवान हूँ.
I don't need anything.
मुझे किसी भी चीज की घटी या जरूरत नहीं है.
No need to advise me.
और मुझे कोई भी आपकी सलाह की जरूरत नहीं है.
I am not in need of any help.
और मुझे किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है.
Not knowing our own pathetic situation.
और हमारी दयनीय परिस्थिति को हम जान नहीं पाते, समझ नहीं पाते.
That is a very dangerous thing.
ये बहुत ही खतरनाक है.
We have also put a shutter.
सहायता मिलनी चाहिए, उससे हम इच्छा को हम मोड़ लेते हैं.
Unaware of our own need, our own condition.
और हमारी जरूरत, हमारी अवस्था को हम देख नहीं पाते हैं.
And Jesus saying, but you don't know that you are wretched, miserable, poor, blind and naked.
यीशु कहता है, तू नहीं जानता कि तू अभागा, तुझ कंगाल, अंधा और नंगा है.
So dear brothers and sisters, I want to encourage each one.
और प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आपको प्रोत्साहित आज करना चाहता हूँ.
Little give some attention in this area.
और इन क्षेत्रों के अंदर आए अपने ध्यान को लगाए.
How is our relation with Christ?
और हमारा रिश्ता यीशु मसीह के साथ आज कैसा है?
Are we maintaining, seeking to maintain our simplicity and devotion to Christ?
और क्या हमने हमारी सिद्धाई को, हमारा समर्पण को यीशु मसीह के साथ उस रिश्ते में बनाए रखा है?
Or our life is a lukewarm life?
और क्या हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति एकदम गुनगुना हो चुका है?
I am a Christian just because I just want to receive answers to prayers.
और मैं मसीह इसलिए हूँ क्योंकि मैं केवल परमेश्वर से अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को ही केवल प्राप्त करना चाहता हूँ.
I just want to get something.
और मुझे कुछ केवल प्राप्त करना है, कुछ प्राप्त करना है परमेश्वर से.
I know love for Jesus, but I just want to get something from.
और मैं परमेश्वर के प्रति प्रेम को नहीं रखता, लेकिन उससे मैं उस चीजों को प्राप्त ही केवल करना चाहता हूँ.
We should not be there.
और हमें वहाँ पर उस जगह पर नहीं होना है.
My earnest desire, nobody sitting here should be in that place of being a lukewarm Christian.
और मेरी आज यहाँ पर इच्छा है कि यहाँ पर बैठा हुआ कोई भी जन उस स्थान में ना हो कि हम गुनगुने मसीह ना बने.
That is the saddest thing that can happen to us.
और ये बहुत ही दुखद या बहुत ही शोकित करने वाली चीज हमारे साथ हो सकती है इस प्रकार.
If we are there today, we have hope.
और यदि हम यहाँ पर आज हैं इस स्थान पर तो हमारे लिए एक आशा आज है.
Confess our lukewarmness. Ask Jesus to restore us.
और हमारे गुनगुनेपन को आए परमेश्वर के सामने हम कबूल कर ले और परमेश्वर से मांगे कि तू हमें पुनर्स्थापित करे.
If you'll repent, if you'll confess, Jesus will forgive us our sins and he'll cleanse us from all unrighteousness.
और यदि हम गुनगुने हैं तो हम अपने पापों को मान ले, हमारे पूरी तरह से वो हमारी अधार्मिकता से हमें पूरी तरह से साफ करने के लिए विश्वास योग्य वो है.
So our love to Christ will be like Paul said.
और हमारा हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति इस प्रकार पौलुस जैसे कहता है उस प्रकार होगा.
His love is compelling me.
और वो कहता है कि परमेश्वर का प्रेम मुझे विवश करता है.
May God really help us to have that life where our love is constraining us, compelling us.
और आइए हम ऐसे जीवन रखें जहां पर मसीह का प्रेम हमें चीजों के लिए विवश करने पाए.
And if you love the Lord, Jesus said, if you love me, you will keep my commandments.
यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे.
If there is a love of the Lord, nothing is a burden for us.
और यदि परमेश्वर के प्रति प्रेम यदि हमारे अंदर है तो कोई भी चीजें बोझ के समान हमको नहीं लगेगी फिर.
Anything is a burden for you. Christian life is a burden, a drag. Somebody should push or pull, and if that is our life, it is because we don't love the Lord.
और यदि मसीह जीवन हमारे एक बोझ के समान बन गया है कि हमें वो खिंचातानी करनी पड़ती, कोई हमको धक्का मारने की जरूरत पड़ती, इसका मतलब कि हमारा प्रेम परमेश्वर के प्रति नहीं है.
May God restore our response to his love and you know with our all being learning to love him.
और परमेश्वर हमारा प्रेम जो उसके प्रति जो होना चाहिए उसे वो पुनर्स्थापित करे और हमें सिखाए कि हम उससे प्रेम कर सके.
परमेश्वर के नाम का धन्यवाद है. प्रेज द लॉर्ड. मैं भी इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि हम लोग परमेश्वर के जो शांति जो है, द पीस ऑफ गॉड, उसको कब हम खोते हैं. व्हेन डू वी लूज दैट पीस, द रेस्ट व्हाट गॉड हैज गिवन अस. जैसे दाऊद कहता है कि आई रिमेंबर द डे ऑफ सेल्वेशन, मैं उस उद्धार के दिन को याद करता हूँ. ये एक याद करने की बात है क्योंकि उद्धार के दिन में जब हम लोगों ने वो शांति को पाया है, वी रिसीव दैट पीस एट द डे ऑफ आर सेल्वेशन. एंड वट समथिंग ट्रेमेंडस इज समथिंग लाइक द फायर वॉज पुट ऑफ इन साइड आर हार्ट. एक ऐसे एक आग को परमेश्वर ने एकदम पूरा तरीके से बुझा दिया और हमें एक नया सृष्टि बनाया. उस दिन को मैं जब याद करता हूँ और आज के दिन को मैं याद करता हूँ, व्हेन आई थिंक ऑफ दैट डे एंड टुडे, हाउ फार आई हैव ग्रोन इन द लव ऑफ गॉड. कितना मैं परमेश्वर के उस प्रेम में मैं बढ़ा हूँ. क्या उसी चीज़ को, इसलिए हम लोग रेवलेशन में पढ़ते हैं, रिमेंबर द फर्स्ट लव, पहले प्रेम को याद करने के लिए वहाँ पे एफिशियों के कलिशा के लिए परमेश्वर याद कराता था कि किस तरीके से वो प्रेम था. उस प्रेम के अंदर कोई ऐसा एक कपट नहीं या कोई ऐसा कुछ बाधा नहीं था. उस क्लियरिटी एंड प्योरिटी, एक शुद्धता था. क्या उस तरीके से क्या मैं बढ़ रहा हूँ या मेरा जो चाल चलन उसी तरीके से ही? क्योंकि यहाँ पे एक वचन जो जैसे भाई ने बांटा, विच टच्ड माय हार्ट, जैसे कि हमने रेवलेशन चैप्टर 13 प्रेरित प्रकाशित वाक्य का 15 हमने देखा था कि तुम ना ठंडा ना गर्म हो, लेकिन उसमें एक सोचने की बात जो लिखा है 16 में, आई विल स्पिट यू आउट ऑफ माई माउथ. स्पिट यू आउट ऑफ मतलब परमेश्वर ये कहता है कि मुझे तू नहीं चाहिए. अगर हम शुद्ध या एकदम लोकल भाषा में बोले, मुझे तू नहीं चाहिए, आई डोंट वॉन्ट यू, जस्ट वॉन्ट टू स्पिट यू आउट. ये एक एग्जामिन करने की बात है. टुडे समथिंग द स्पिरिट यू नो इज आस्किंग अस टू एग्जामिन. Do you want Lord to spit you out of his mouth? And he says, you know, उसमें 17 में एक ऐसा बोला है कि तू चाहे तो कुछ भी बोल दे, लेकिन मैं जानता हूं तू क्या है. Very clearly it says, I know what you are. The last part, 17 का आखिरी बार वो कहता है कि मैं जानता हूं तू गरीब है, तू अंधा है, तू नंगा है. He knows my state. Today, परमेश्वर के सामने, आज परमेश्वर के सामने मैं क्या हूं, God knows. And if there's anything, जैसे कि अगर वो शांति नहीं है मेरे अंदर, I'm not living at peace with God, that means I have lost something. एक
बहुत बड़ा चीज को मैंने खोया है. यू नो देयर इज वन नाइस वर्स विच आई रेड टुडे मॉर्निंग अगेन रिमेम्बर्ड दैट इज पहला जॉन 3 का जैसे कि हमने पढ़ा था उसमें एक शब्द मुझे छुआ अगेन. It says, verse 1, see what kind of love Father has given to us that we should be called the children of God. यहाँ पे हिंदी में ऐसा लिखा गया है, इस कारण वो कहता है कि परमेश्वर की संतान कहलाओ. Both the sides. One side is where you are a God's children. And God wants to spit you out. And other side it says, for this reason, you are to be called children of God. Where I stand, मेरा जो आज का स्थिति कहाँ पे है कि परमेश्वर को मैं ऐसा एक कार्य कर रहा हूँ, I have come out कि ऐसा एक कार्य कर रहा हूँ कि वो मुझे थूके, या परमेश्वर का मैं संतान कहलाऊँ. It's very एक टचिंग वर्ड्स है दैट टू बी कॉल्ड एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड. एक सौभाग्य जो परमेश्वर ने मुझे दिया है टू बी कॉल्ड एज चिल्ड्रन ऑफ. व्हेन आई लिव एज चिल्ड्रन ऑफ गॉड, जब मैं परमेश्वर का एक संतान कहलाता हूँ, तो मुझे किस तरीके से मुझे रहना है वो एक अच्छा एक चित्र ऐसा है कि मुझे लिपटा रहना है. यू नो लिपटा रहना है. उसको अगर मैं बताऊँ उसको योहन्ना के सुसमाचार में ही लिखा गया है, ग्राफ्टेड इन द लॉर्ड. दैट इज देयर इन हम लोग योहन्ना के सुसमाचार में हम पढ़ेंगे जॉन चैप्टर 15. यू नो देयर इट सेज कि जब मैं परमेश्वर के साथ बांधा रहता हूं, व्हेन आई अबाइड इनसाइड, दैट मींस व्हेन आई एम ऑलवेज क्लिंगिंग टू क्राइस्ट, then I grow, then I bear fruit. But if that is cut off, I lose the peace. मैं उस शांति को खो लेता हूँ. ये तो वचन हम लोग सब लोग जानते हैं. इस वचन को आप लोग सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लिखता है. अगर मेरा वो जोड़ is not there with the branches, अगर मेरे डाली के साथ मेरा कुछ संबंध नहीं है, तो मैं आत्मिकता से कोई फल उत्पन्न नहीं कर पाऊंगा. देन इट बिकम्स लाइक एज इफ आई एम टोटली अस्ट्रे, चला गया हूँ. और जैसे कि हमने देखा कि उड़ाव पुत्र के इसमें कि फादर डज नॉट कम, द ट्री विल नॉट कम इन सर्च एंड से कम इनसाइड. नो, जब हम जा करके उसके अंदर अपने आप को बांधते हैं, दैट इज हाउ इट गोज. नॉट अलाउिंग गॉड टू, वी शुड नेवर वेरी बी केयरफुल दैट टू द लाइफ वॉट आई लिव. I am now also asking God that I should not come to that stage where God wants to spit you out, but rather to be called children of God. So really it is a touching verse which God is reminding us to understand the love of God and to experience that peace, not for one day. Remember the day of salvation. That should be continuously in my throughout the days of my life. In Psalms 23, what it says, even I walk through the valley of death. जैसे कि भजन संहिता 23 में क्या लिखता है, अगर मैं अंधकार से भी या मृत्यु से भी मैं गुजरता हूँ, वहां पे तेरी करुणा और तेरी जो शांति, that is your kindness will follow all the days of my life. So really praise God and that the spirit to help us, pavitra atma hamari sahayata kare. Amen.
पिछले सप्ताह में इस वचन से बहुत ही आशीषित हुआ, वो वचन मैं बांटना चाहता हूँ. यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 8 वचन, जॉन 14:8. वहाँ पे फिलिपुस उससे कहता है यीशु मसीह से, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है. यीशु ने उससे कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है. तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? और इस वचन के भाग में से जो 9 वचन का पहला भाग है जो मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया, जैसे कि परमेश्वर मुझे उस प्रश्न को पूछ रहा है. वहाँ पे लिखा है, यीशु ने उससे कहा, फिलिपुस मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ और क्या तू मुझे नहीं जानता। और फिलिपुस की जगह पर हम अपना नाम वहाँ पर रखे, फिलिपुस जहाँ लिखा है 9th वचन में कि किरण वहाँ पर डाले कि हे किरण मैं इतने दिन से तेरे साथ हूँ और क्या तू मुझे अभी नहीं जानता। और इस वचन ने बहुत ही मुझे प्रोत्साहित किया कि हम फिलिपुस के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये सब लोग वहाँ यीशु मसीह के आसपास हैं, लेकिन यीशु चाह रहा है कि उसके पास में केवल न बने रहे लेकिन उसको जाने और उसको सच में उसके प्रेम को, जैसे आज हमने सुना बहुत ही प्रोत्साहित वो वचन था कि केवल जरूरतों के लिए परमेश्वर। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी वो स्वभाव था कि जब जरूरत आती है, ऑफिस के अंदर कुछ आता है तो मेरी प्रार्थनाओं का जो स्तर बहुत ही बढ़ जाता है, इतना गंभीर मेरी सुबह की प्रार्थनाएं हो जाती है, जब प्रेजेंटेशन है या कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ करना है मेरी प्रार्थनाएं बहुत ही गंभीर हो जाती है। जब वो काम फिनिश हो जाता है तो उतनी गंभीरता शायद प्रार्थना में या उतना डिवोशन प्रभु के पास में आने का मन उतना नहीं करता है, थोड़ा सा आज़ादी महसूस होती है। तो मैं भी अपने आप को देखता हूँ कि प्रभु मैं उस प्रकार नहीं, लेकिन मेरा प्रेम वहाँ से एक दूसरे स्तर पर बढ़े। और अंत में एक वचन पढ़ना चाहूँगा, यिर्मयाह 17 जरमाया 17 उसका 5 वचन से आगे, यहोवा कहता है श्रापित है वह पुरुष जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। और यहाँ पर वो लिखता है 6 वचन में, वह निर्जल देश के अधमेरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई न देखेगा। जैसे हमने स्टार्टिंग में ब्रदर डैनी ने बताया था वो उस क्रिसमस ट्री के बारे में, वो 6 वचन में वही लिखा है कि निर्जल देश के अधमरे पेड़, वो अधमरा पेड़ एक क्रिसमस ट्री जैसा ही हो सकता है, जो बाहर से बहुत ही अच्छा मेरा जीवन दिख रहा है, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं लेकिन भीतर कोई जीवन नहीं है। लेकिन 8 वचन कहता है, 7 वचन से, धन्य वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो, वह उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा हो और उसकी जड़ जल के पास फैली हो, जब धूप होगी तब उसको न लगेगी, उसके पत्ते हरे रहेंगे, सूखे वर्ष में उसके विषय कुछ चिंता न होगी क्योंकि तब भी वो फलता रहेगा। वहां पर 8 वचन की शुरुआत में लिखा है कि उस वृक्ष के समान होगा। तो हम आज मैं अपने आप को जांचता हूं कि प्रभु मैं उस वृक्ष के समान तो हूं जो नदी के किनारे लगा हूं, लेकिन वहां लिखा है कि उसकी जड़ जल के पास फैली हो। ये बहुत ही उत्तम प्रोत्साहन मुझे मिला कि आज मेरी जड़ें वो नदी के पास में हूँ, मसीह जीवन को मैं जी रहा हूँ, लेकिन क्या मेरी जड़ें उस जल जो जीवन का जल यीशु मसीह, उससे वो सामर्थ वो जीवन प्राप्त कर रहा है या नहीं। मैं अपने आप को जांचना चाहता हूँ कि और अधिक यीशु का स्वभाव इस कलीसिया में जब हम आते, बहुत सारे सत्यों को मैं सुनता हूँ, बहुत सारे सरमन को मैं सुनता हूँ, बहुत सारे अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखता हूँ, लेकिन उस जड़ के जल के पास फैलने का अनुभव मेरे जीवन में शायद उतना अधिकाई से नहीं है। मैं सुन रहा हूँ, मैं बस एंजॉय कर रहा हूँ, नदी जा रही है कि मैं नदी के तीर पर लगाया गया हूँ, लेकिन उस वृक्ष के समान आज मैं बनना चाहता हूँ, जहाँ पर फिलिपुस ने भी यीशु मसीह से कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि यीशु मसीह मुझसे न कहे कि मैं तेरे पास में हूँ, क्या फिर भी तू मुझे नहीं जानता है। मैं अपने जीवन को जांचना चाहता हूँ, मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ कि सच में सत्य को सुनना या जानना इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन उस जड़ के समान उस नदी से जीवन को लेना। पत्रस में लिखा है कि उसके दिव्य स्वभाव में सहभागी होने के लिए हमको नए नियम में बुलाया गया है। और आज हम अगर पुराने स्वभाव को लेकर चल रहे, उसी गुस्से के अंदर, उसी उस लस्ट के अंदर या वासनाओं के अंदर जीवन जी रहे हैं, घमंड के अंदर जीवन जी रहे हैं, तो हमारी जड़ें शायद उस जल के पास नहीं फैली हुई है। और मैं चाहता हूँ कि कलीसिया के रूप में जब इस कलीसिया में जुड़ा हुआ हूँ तो मेरी जड़ जो है सबसे पहले उस जल से, उस यीशु मसीह के स्वभाव में, उसकी बातों में, उसके जीवन में जड़ पकड़े, और फिर मैं कलीसिया के लिए एक आशीष बन पाऊंगा।
We heard about in Romans 5:1, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ.
हमने जैसे रोमियों का 8 में पढ़ा था कि हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें धार्मिकता के साथ खड़ा किया है उसके प्रेम के द्वारा।
So this is the beginning of a Christian life.
और ये एक शुरुआत है एक मसीहा के जीवन का।
We all need to examine whether I have begun my Christian life.
और हमें ये जांच करना है कि क्या मैंने अपना मसीहा जीवन जो है उसका शुरुआत किया है क्या?
Whether I have the confidence today that I have been justified by faith and I have peace with God through the Lord Jesus Christ.
और क्या मुझे वो धार्मिकता मिला है और वो परमेश्वर के साथ मेरा वो शांति बना है क्या? वो मुझे सोचना है।
Am I living in a constant peace with God throughout the day?
क्या मैं एक लगातार शांति के साथ मैं जीता हूं परमेश्वर के साथ पूरे दिन?
Where I know that all my sins have been forgiven.
क्या मेरा पूरा पाप क्षमा हो गया है क्या?
That I know that God is looking at me with favor.
और जब परमेश्वर मुझे एक दया के साथ वो देखता है.
God is happy with me.
और जब परमेश्वर मेरे साथ खुश है, प्रसन्न है.
I am the beloved child of God.
और मैं परमेश्वर का एक चहिता एक बच्चा हूं.
That I rejoice in the Lord.
कि मैं उसमें आनंद लेता हूं.
That I rejoice in the fact that God has chosen me.
और मैं ये आनंद लेता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुना है.
And I have nothing between me and God. There is nothing.
और मेरे और परमेश्वर के बीच में ऐसा कुछ भी बात नहीं है.
This is the beginning. Or this is the thing we need to start our Christian life with.
और ये एक शुरुआत है और इसके साथ हमारा मसीह जीवन का हमें शुरुआत करना है.
Christian life is not where I try to please God by my own self efforts.
और ये मसीह जीवन ऐसा नहीं कि मैं परमेश्वर को अपने ही शरीर के अनुसार या अपने ही मन के अनुसार मैं उसको पसंद करूं.
And somehow I try to please and hope that God will be somehow smiling at me.
और मैं ऐसा उसको पसंद करता हूं कि कुछ किसी भी तरह की परमेश्वर मैं मुझे देख के वो मुस्कुराए.
It says in Romans 4
और रोमियो का 4 में
and verse 5
उसका 4 का 5 में
it says but to the one who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is credited as righteousness. So there is no justification for those who are godly.
और जो विश्वास में है उसके लिए कोई justification नहीं है.
जो धर्म जो those who are godly, there is no justification for them.
और जो जो भक्ति में जीते हैं उसके लिए कोई धार्मिकता नहीं है.
So if I am already godly,
अगर मैं भक्ति में जी रहा हूँ,
before coming to Christ, I have already become godly.
और परमेश्वर में आने से पहले मैं वो भक्ति का जीवन में जीवन दान जीवन जी रहा हूँ.
I can never be justified.
और मैं उसके साथ मैं धार्मिकता को नहीं प्राप्त कर सकता.
Justification is only for those who are ungodly.
और जो जो मसीहा नहीं है, जो नहीं जानते हैं, उनके लिए ही वो धार्मिकता का वचन है. जो अधर्मी है उनके लिए वो धार्मिकता का वचन है.
सो बिफोर आई कम टू जस्टिफिकेशन आई हैव टू कम टू ए प्लेस वेयर आई नो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मी एंड द वर्स्ट सिनर इन द वर्ल्ड.
और मैं ऐसे जगह में मुझे आना है कि मेरे और वो जो गंभीर पापी है उसके बीच में कोई मेरा अंतर नहीं है. उस वैसा एक स्थिति में मुझे आना है.
इट इज वेरी डिफिकल्ट समटाइम्स टू कम टू दैट प्लेस.
और बहुत ही एक मुश्किल का एक बात है उस वैसे एक जगह में आना.
मे बी आर्टिफिशियली आई कैन से दैट देयर इज नो डिफरेंस.
और मैं ऐसी बाहर से मैं कह सकता कोई अंतर नहीं है.
बट इट्स गॉड्स वर्किंग इन आवर हार्ट्स दैट brings us that realization that there is no good in me.
और ये एक परमेश्वर का कार्य है जो मेरे अंदर काम करता है और ये बताता है कि मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं है.
That's why in Romans 3:23 it says, "For all have sinned and come short of the glory of God."
और इसलिए रोमियो का 3 का 3 में हम पढ़ते हैं 23 में कि सब लोगों ने पाप किया है, परमेश्वर के महिमा से रहित हैं.
And there it says in 22 that there is no distinction.
और वहाँ पे ऐसा लिखा गया कोई वहाँ पे पक्षपात नहीं है.
There is no distinction. There is no difference.
और कोई उसमें कोई difference नहीं, अंतर नहीं है.
That means there is no big sinner and small sinner.
वहाँ पे बड़ा पाप छोटा पाप ऐसा कोई नहीं है.
That I am equally guilty before God like the terrorist or like the rapist or anyone in the world. I am equally guilty before God.
और मैं सबसे बड़ा पापी जो है जो टेररिस्ट है जो रेप किया है वो उस समान मैं अपने आप को उस तरीके से एक पछतावा में करता हूँ.
That means that is how I come to God and God justifies me as if I have never sinned.
और मैं इस तरीके से जब आता हूँ और परमेश्वर मुझे धार्मिकता ठहराता है जैसे कि मैंने पाप नहीं किया है.
And daily I do not come to God based on how I lived.
और मैं परमेश्वर के पास ऐसा नहीं आता हूँ जैसे कि मैं जीता हूँ उसके द्वारा नहीं आता
हूँ. Like we read that we do not work towards acceptance.
और हम लोग एक्सेप्टेंस पाने के लिए हम लोग काम नहीं करते हैं.
That means my son does not have to do lot of things to say that he is my son.
और जो बेटा है उसको इतना काम करने की जरूरत नहीं है दिखाने के लिए कि वो मेरा बेटा है.
There is no work, zero work when I come to God and I believe only in the finished work of Jesus on the cross.
और एकदम एक शून्य काम है जब मैं प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता हूँ और उसके पास आता हूँ.
That means I do not come on the basis of what what I have done.
और मैंने जो किया है वो कार्य के ऊपर मैं नहीं उसके आधार पे नहीं आता
हूं. But on what Jesus has done.
लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो मेरे लिए किया है उस चीज उसके आधार पे आता हूं.
When I come like that every day I have peace with God.
और जब मैं हर दिन मैं जब आता हूं उस तरीके से मैं परमेश्वर का वो शांति को प्राप्त करता
हूं. But if I come on the basis of works I will never have peace.
और लेकिन कार्य के द्वारा काम के द्वारा मैं आता हूं तो मैं कभी संतुष्ट नहीं प्राप्त करूंगा.
प्रभु का धन्यवाद करती हूं कि सच में प्रभु अपने अपने वचन से हमें करेक्ट करता है और जिसे रेवलेशन 3:15-17 में हम पढ़ते हैं उसके आगे परमेश्वर हमें इस वचन से चेतावनी देता है कि अपने आप को जांचना है कि हम ठंडे हैं गर्म हैं या हम वो लोग तो नहीं है जो धोखे में जीते हैं वो सोचते हैं कि वो धनवान है पर वो कंगाल है. बट उसके बाद इमीडिएटली 18 वर्स में प्रभु एक होप भी हमें देता है. प्रभु कहता है कि इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे ले ले कि तू धनी हो जाए और श्वेत वस्त्र ले ले कि उन्हें पहनकर तुझे अपने कंगालपन की लज्जा ना हो और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ले कि तू देखने लगे और मैं जिस जिस से प्रेम करता हूँ उन सब को उल्हाना और ताड़ना देता हूँ इसलिए सरगम हो और मन फिरा. तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि सच में प्रभु चाहता है कि हम सच में प्रभु के सामने और कहें कि प्रभु हाँ सच में मैं नंगा हूँ प्रभु हाँ मैं सच में अंधा हूँ प्रभु हाँ प्रभु सच में मेरे वस्त्र गंदे हैं प्रभु और प्रभु का खुद वायदा है इसमें कि तू मेरे पास आ और मैं तेरे नंगे पन को अपने श्वेत वस्त्रों से ढाप दूंगा मैं तेरे आंखों को ज्योतिर्मय करूंगा ताकि वो सारी बातें जो आज हम नहीं देख पाते और कई बार उस धोखे में जीते हैं प्रभु कहता है कि वो सारी चीजें मैं तुम्हारे लिए करूंगा. तो प्रभु का धन्यवाद कि हम जिस भी दशा में है वहां पर भी हमारे लिए एक होप है परमेश्वर का. और सच में जैसे ब्रदर ने बताया कि मुझे कुछ अर्न नहीं करना है मुझे सिर्फ ये विश्वास करना है और वही मेरे क्रिश्चियन लाइफ की फाउंडेशन है दैट ही लव्स मी और मैं जहां कहीं भी हूं मैं वहां से भी जब प्रभु को पुकारूंगी इस प्रोडिकल सन की तरह परमेश्वर अपना हाथ बढ़ाकर मुझे जरूर थामेगा. और ये आशा है मुझे आशा है और मैं विश्वास करती हूँ कि हर एक जो किसी भी दशा में हो चाहे किसी भी सिचुएशन में हो ये विश्वास कर सकता है कि प्रभु हमें उठाएगा. और पिछले दिनों में मैं एक सरमन सुन रही थी जिसने सच में मुझे एक चैलेंज किया जहाँ पे वो बता रहे थे कि टुडे आज के दिन के बारे में जहाँ इसराइलियों के बारे में का एग्जांपल देके उन्होंने समझाया था कि इसराइली भी जो थे जब वो मिस्र में थे गुलामी में थे हम लोग भी वैसे ही मिस्र की गुलामी में थे और वहाँ पर परमेश्वर ने मूसा को भेजा जैसे यीशु मसीह हमारे जीवन में आया और उस गुलामी से निकाल कर मिस्र देश से निकाल के परमेश्वर हमें लेकर गया और प्रभु ने लाल समुद्र हमारे लिए खोल दिया और वहां से निकला और वो प्रॉमिस लैंड तक हमें लेके गया. तो बट उस पूरी जर्नी में हम बहुत सारी चीजों को देखते हैं कि परमेश्वर ने जब उन इसराइलों को उस मिस्र देश से निकाला तो कैसे बहुत बार जब लाल समुद्र उनका पार हो गया तो वो बहुत खुश हुए और प्रभु को धन्यवाद करने लगे. बट नेक्स्ट मोमेंट ही जब वो जंगल में थे और उन्हें पानी नहीं मिल रहा था या कुछ खाने को नहीं था तो वो तुरंत कुड़कुड़ाने लगे और उन्होंने अपने मन को कठोर कर लिया. तो जैसे इब्रानियों चैप्टर 3 में लिखा हुआ है वर्स 17 में कि जहाँ पे इसराइलियों का जीवन कंपेयर किया गया और हमारे लिए एक वार्निंग यहाँ पर प्रभु ने दी है वर्स 7 से पढ़ूंगी. अतः जैसे पवित्र आत्मा कहता है यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे. इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना. तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे. और हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले. और फिर वर्स चैप्टर 4 वर्स 2 में लिखा है क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा. तो यहाँ पे एक हमारे लिए चेतावनी है कि हमने भी उद्धार पाया हम लोग भी जैसे उन लोगों ने वो पिलर ऑफ क्लाउड और वो फायर, वो सारी चीजें उनके जीवन में थी, तो हमने भी वो बपतिस्मा लिया, वो पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया। पर उसके बाद जब जैसे जैसे हम मसीह जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या वो वचन जो हम सुन रहे हैं डेली आके, जो इतने अच्छे वचन हमें यहाँ पर मिल रहे हैं, मैं मेरे बारे में सोच रही थी, जैसे प्रभु ने वचन मेरे लिए ही दिया है कि वो सारे वचन जो हम सुन रहे हैं, पर वो क्या सच में विश्वास के साथ मेरे मन में बैठ रहे हैं, और वो सच में क्या वो एक फल को लेकर आ रहे हैं, ताकि जैसे आज का प्रॉमिस वर्ड था कि तुम वो फल लाओ ताकि तुम मेरे वो चेले ठहरे, तो क्या सच में वो फल मेरे अंदर से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या उसको सिर्फ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें लिखा है कि आज के दिन जब तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। तो जैसे आज पवित्र आत्मा ने अबू अंकल के थ्रू एक उस वचन को भेजा है कि सच में आज हमें अपने आप को देखना है कि जैसे किसी की मगनी होती है और सच में एक अलग ही वो जॉय होता है, वो एक अलग ही आप उस दिन के लिए देखते हो, जो वेडिंग डे आपका आने वाला है उस दिन की तैयारी में आप लग जाते हो और एक अलग ही चेंजेस आपके मन में आता है। तो क्या सच में प्रभु को जो मैं मिलने वाली हूँ, क्या उस दिन को मैं उस तरीके से देख पा रही हूँ? पर अगर सच कहूँ तो शायद नहीं, मैं उस दिन को आज उस तरीके से देख रही हूँ, जो 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 आनंद या जो एक एक तैयारी का दिन होना चाहिए वो शायद नहीं है। तो जैसे वचन में लिखा है कि आज अगर तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, तो जैसे प्रभु जब अपना वचन भेजता है तो प्रभु हमारी मदद करे कि अपने मन को कठोर ना करें। और जैसे रिवेलेशन में लिखा है कि तुम मेरे पास आ और मुझसे वो सुरमा ले, मुझसे वो श्वेत वस्त्र ले, तो मेरी यही प्रार्थना है कि प्रभु हम सबकी मदद करे प्रभु, ताकि जब आप आए तो हम लज्जित ना हो और हम आपके सामने खड़े रह सके। तो पूरी कलीसिया की प्रभु हमारी मदद करे कि इसराइलियों का जीवन जो हमारे लिए चुनौती के रूप में प्रभु ने रखा है कि सिर्फ प्रभु मुझे आशीष दे तो हम स्तुति करेंगे, और जैसे ही जंगल में कुछ पानी नहीं है, कुछ खाने को नहीं है, तो हम कुड़कुड़ाने लगे, प्रभु हमारी मदद करे कि चाहे वो मुझे मारे, चाहे वो कुछ भी करे, जैसे अय्यूब कहता है कि मुझे तो निश्चय कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। तो प्रभु चाहे हमें कुछ दे या ना दे, वो सच में प्रभु है, वो इसलिए प्रभु नहीं है कि वो मुझे कुछ देगा, पर वो जो है वो सो है। तो प्रभु सच में हमारी मदद करे कि हम हर परिस्थिति में प्रभु का धन्यवाद करें और उसकी स्तुति करें, बिकॉज ही इज लॉर्ड ऑफ आर लाइफ। वो उसकी प्रभुता किसी आशीष पे डिपेंड नहीं करती है, वो सच में प्रभु है।
आज के वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। हमेशा प्रभु का वचन जब आता है तब आज मैं इस वचन को इस तरह से लेता हूँ। समझ लीजिए, आज एक चित्र है हमारे सामने, एक उस समय का चित्र जब प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और उन्होंने कहा था कि आप में से कोई मेरा विश्वासघात करने वाला है। मैं इस बात को इस तरह से लेना चाहूँगा और आपके सामने दर्शाना चाहूँगा कि हमारे पिता ने हमसे कितना प्यार किया और उस प्यार के बदले में हमने क्या किया। क्या आज हम उस प्यार के बदले में उसी तरह से उन शिष्यों के जैसे हम भी अनजान हैं कि कहीं ना कहीं अपने जीवन में हम उसका विश्वासघात कर रहे हैं? और जब हम उसका विश्वासघात करते हैं तब क्या शांति हम उनके साथ बना पाएंगे जब हम अपने पिता के सामने जाते हैं? तब उस वक्त इस शिष्य को नहीं वो जान पाए कि जुजास इस्करियोती ही वो था जिसने प्रभु का विश्वासघात किया। हम आज उस समय को फिर से याद करना चाहेंगे, हम भी आज उसी के शिष्य हैं, और आज प्रभु शायद हमें आत्मा में ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं हम भी उसके प्यार के साथ में कोई ना कोई विश्वासघात अपने चाल चलन से, अपने चरित्र से, अपने विचारों से हम कर रहे हैं, और उसकी शांति से हम अपने आप को दूर बनाए रखे हैं। इसलिए मैं आज चाहूँगा कि आप सभी लोग उन शिष्यों की तरह अनजान ना रहे, बल्कि पवित्र आत्मा में प्रभु से अपने सारे पापों की कबूली देकर ये बात को जरूर उसके सामने ग्रहण करें कि हाँ प्रभु, मैं ही हूँ वो जिसने आपके साथ में, आपके प्यार के साथ में विश्वासघात किया। आइए अपने सरों को झुकाएं और हम प्रभु की प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता परमेश्वर, तुम्हारे दया के लिए, तुम्हारे असीम प्रेम के लिए प्रभु हम आपके शुक्रगुजार हैं। प्रभु आज उस समय को हम याद करते हैं, और प्रभु हम अपने आत्मा में और पूरे मन से ये कबूल करते हैं प्रभु कि कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में कम पड़े हैं, हमारे जीवन में पूर्ण मन से पूर्ण शक्ति से प्रभु और पूरी आत्मा से प्रभु हम आपके प्रति ईमानदार नहीं रह पाए। प्रभु हमारी क्षमा कीजिए प्रभु, आपके खिलाफ बिल्कुल आपके ही खिलाफ प्रभु हमने ये विश्वासघात किया है और हम इसकी कबूली सबके सामने इंडिविजुअली हम आपको देते हैं प्रभु। कृपा कीजिए प्रभु और आप हमें आपकी करुणा आपकी दया और आपका अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु। हे पिता, आज उसी उड़ाऊ पुत्र के जैसे समान हम भी आपके सामने हैं प्रभु, आप हमारी क्षमा कीजिए और हमें आप स्वीकार कर लीजिए। कृपा कीजिए, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरिए प्रभु, आपके नए नियम के वचन के अनुसार प्रभु, आपकी जो शांति है जो असीम है जो हमारी क्षमता के बाहर है समझने के पार है प्रभु, वो शांति आप हमें दीजिए प्रभु, और हमारे जीवन में हम कभी भी व्याकुल ना हो, कभी भी हम ना डगमगाए, ऐसा विश्वास हमें दीजिए प्रभु। प्रभु आप में और आपके प्रेम में हमें स्थिर बनाइए प्रभु। प्रभु हमें सामर्थ्य दीजिए आपके पवित्र आत्मा का, ताकि हम उसमें और आपके प्यार में स्थिर रह सकें और आगे बढ़ें, और एक उगते हुए सूरज की तरह प्रभु हम आपकी तरह बने, दिन प्रतिदिन प्रभु आपके गौरव में बढ़े, आपके महिमा में बढ़े, ऐसा हो प्रभु। प्रभु हमारे सारे कमी घटियों की आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु, हमारे सारे भाई बहनें और बच्चों की भी हम आपके सामने सपूर्ति करते हैं प्रभु। कृपा कीजिए और हमें कबूल कीजिए प्रभु, हमारी आराधना कबूल कीजिए प्रभु, और हमारे सारे पापों को धो दीजिए। कृपा कीजिए और हमें सामर्थ्य दीजिए, ताकि हम आप में बने रहें, आप में डटे रहें, और आपके लिए गवाही बनकर हम सबके सामने इस दुनिया के सामने खड़े रह सकें। ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।